السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالم برزخ میں ہمارا سفر, ہمیں بہت اچھی سواری ہیلی کاپٹر کی طریقے کی ملی ہے اور ہم اس میں سفر کر رہے ہیں, اور ہم اس طریقے سے سفر کر رہے ہیں کہ پرواز جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ بہت زیادہ بلندی پہ نہیں ہے اور ہم نیچے کے حالات اور معاملات دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے رہنما دوست علم نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ سب مقامات تم دیکھتے ہوئے چل رہے ہو یا چل رہی ہو کہ اگر ان معاملات میں کہیں کوئی گڑبڑ تمہارے ساتھ ہو تو تم بھی یہاں پہ ان مشکلات کا شکار ہو جاتی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں اور کچھ پریشان سے ہیں, کچھ اس طرح کی اذیت میں ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ان کے کہ وہ کیا اپنے ساتھ کریں. جیسے انسان ہوتا ہے نا کہ بس ایک بے بسی کی حالت میں کہ اس کا بس نہیں چلتا کہ شاید اپنے آپ کو مارنے ہی لگے. اور کچھ روایات میں ایسا بھی ہے کہ روزے محشر انسان گناہوں کی وجہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہی جو ہے نوچے گا اور کاٹے گا, اس طریقے کی کچھ روایات بھی ہیں. تو ہم وہی معاملات ان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عجیب فرسٹریشن سی, عجیب سا کچھ عالم ہے لوگوں کا. تو ہمارے دوست نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہاں پہ ان کی نمازیں جو ہیں وہ قبول نہیں کی جا رہی ہیں اور ان کو سواری نہیں مل رہی, اور یہ بہت بے بسی کا شکار ہیں کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کو سواریاں مل رہی ہیں, بھلے ہی کیسی بھی ملے مگر بہرحال سواری مل رہی ہے اور ان کو نہیں دی جا رہی. جب ہم نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نماز کو حقیر سمجھتے تھے. تو ہم نے پوچھا کہ کوئی نمازی ہو, نماز پڑھتا ہو اور وہ نماز کو حقیر سمجھے. تو ہمارے دوست نے وہی مولا کا فرمان جو مولا نے وصیت کی تھی آخری وقت میں, جو بہت مشہور ہے کہ ہماری چھٹے امام کے جو وصیت ہے کہ ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو حقیر سمجھے. تو ہم نے کہا ہاں ہم نے یہ بالکل سنی ہوئی ہے, یہ نمازی ہیں اور حقیر کیسے سمجھتے ہیں. تو کہا اس وجہ سے کہ نمازوں کو اتنا لیٹ کرتے تھے, یعنی اپنی ضروریات, اپنی زندگی کے دوسرے پروگرامز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. انہیں نماز کی معرفت نہیں تھی کہ جب ایک دفعہ مؤذن نے کہہ دیا اللہ اکبر, مطلب خدا سب سے بڑا ہے, اب میرے گھر کے کاموں سے بڑا ہے, میرے فون کال سے بڑا ہے, میری ہر چیز, یعنی مجھے باہر جانا ہے کسی کام سے, کچھ بھی ہے سوائے یہ کہ کوئی ایسی مجبوری, کبھی ایسا ہوتا ہے فلائٹ کا ٹائم ہو, کوئی اپوائنٹمنٹ ہی ایسا ہو ڈاکٹر کے ساتھ یا کوئی دوسرا معاملہ ہو, اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات جن میں میں کوشش کر سکتی ہوں کہ نماز کو اول وقت پڑھوں, یا کم سے کم کل جو ہم نے پوسٹ شیئر کی ہے کہ فضیلت کے اوقات میں تو کم سے کم نماز پڑھی جائے. تو کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بے معرفت نماز پڑھتے تھے, کہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں مگر معلوم نہیں کیا کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر کہ خدا سب سے بڑا ہے, اب اس وقت کوئی چیز میرے لیے معنی نہیں رکھتی سوائے خدا کے. یہ لوگ ایسے نماز کے اوقات میں فون پہ ہیں تو فون پہ بات کر رہے ہیں, کسی کی کال آ رہی ہے تو ریسیو بھی کر رہے ہیں, جبکہ یہ موقع چانس ان کے پاس ہوتا ہے کہ یہ کال بیک کر سکتے ہیں, اول وقت نماز ہے کہ نماز کو اہمیت دیں. اسی طرح کی مثالیں کہ جہاں پہ کوشش کر سکتے تھے وہاں کوشش بھی نہیں کی, اور خدا نے بندے سے صرف کوشش مانگی ہے, 100% تو نہ ہم کر سکتے نہ خدا نے مانگا ہے. تو ہمارے دوست نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نماز پڑھتے تو تھے مگر اتنا ڈیلے کرتے تھے کہ اگر ظہر ہو رہی ہے 12:30 بجے, 1:15 بجے, اور یہ نمازوں کو پڑھ رہے ہیں 5:00 بجے, 5:30 بجے, 6:00 بجے, کہ بس اب مصلے پہ بیٹھ گئے ہیں, ظہر, عصر, مغرب, عشاء پڑھ کے ہی اٹھیں گے. تو ایسی نماز بارگاہ خدا میں جا کے ان کے لیے بد دعا کرتی ہے. باقاعدہ روایت کے الفاظ ہیں یہ کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اسی طرح خدا تجھے ضائع کرے. اب ان کو یہ جو لوگ ہیں پریشان ہیں, ان کو اب وہ چیزیں دنیا میں جو یہ نماز کے ساتھ معاملہ کرتے تھے انہیں اب بہت افسوس ہو رہا ہے. انہیں وہ سب چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ جب علماء کرام ان کو بتاتے تھے, مثالیں دیتے تھے بچوں کی طرح کہ دیکھیں جب آپ किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ खाना चाहते हैं, आप चाहते हैं गरम गरम वो सर्व हो, उसकी लज्जत, उसका जायका, उसकी खूबसूरती, उसका मज़ा, जो भी कहेंगे वो उसी में है कि उसको गरम गरम पेश किया जाए खाने को। एक खाने की लज्जत का ख्याल है, एक खाने की फ़िक्र है, मगर जो नमाज अपने अव्वल वक्त में, अपनी फजीलत के अवकात में जिस खूबसूरती के साथ आसमान पे बुलंद होती है, इस तरीके से कि खुशबुओं में मुअत्तर होती है, फूलों के साथ मुअत्तर होती थी, और वक्त का इमाम, उसके लिए कोई क़ैद नहीं है हमारे इमाम के लिए कि कहाँ पे दिन हो रहा है, कहाँ पे रात हो रही है। अव्वल वक्त नमाज जहाँ पे हो रही है, ज़माने के इमाम अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे जहन में ये होता है कि हम भी अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ें, तो वो नमाज़ खूबसूरती के साथ जाती है। तो हमें हमारे इल्म दोस्त ने बताया कि इन्होंने उस मौके को खो दिया, पढ़ते तो थे मगर हकीर समझते थे। हमने खुदा का शुक्र अदा किया कि हम बहुत कोशिश करते थे, बहुत ज़्यादा हमारी कोशिश होती थी कि ज़ोहर असर का हंगाम का वक्त होता था, हम उस टाइम पे कभी बच्चों के स्कूल की टाइमिंग्स की वजह से, कभी और कोई मसरूफियत की वजह से, मगर पूरी कोशिश होती थी कि मगरिब इशा को हम वक्त पे अदा करें, और उस और कोशिश ये भी करते थे कि ज़ोहर असर को भी अगर हमें अव्वल वक्त नहीं मिलता तो फजीलत के अवकात में पढ़ लें। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि हम जो कैलेंडर अपने रमज़ान में फॉलो करते हैं उसी को पूरे साल हमें देखना चाहिए कि ज़ोहर असर मगरिब इशा की नमाज़ों के अवकात को, क्योंकि अज़ान जो है मयार नहीं है। जो लोग ऐसी कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ अज़ान की आवाज़ नहीं आती, तो वो किस तरह नमाज़ पढ़ेंगे? एक लॉजिक है ना, मतलब एक अकल की बात है समझने की कि अज़ान का ताल्लुक नहीं है। हमें अपने कैलेंडर को फॉलो करना है। हम देखते हैं कि ज़ोहरेन का यानी ज़ोहर की अज़ान जो है मस्जिद से तकरीबन 15-20 मिनट लेट होती है। कैलेंडर पे आप लोग आजकल टाइमिंग्स देखें तो 15 मिनट का फ़र्क हमें हमेशा नज़र आता है। तो अव्वल वक्त अगर नमाज़ पढ़ें बेहतरीन है, अगर अव्वल वक्त कोई ऐसी मसरूफियत आ गई है हमारी कोशिश के बावजूद, तो फिर फजीलत के जो हमने चार्ट भेजे हुए हैं कि 2 से 2.5 घंटे के अंदर ज़ोहर के अपनी ज़ोहर और असर को अदा कर लिया जाए। फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक ऐसा ग्रोह है जहाँ ख़वातीन हैं और वो भी बहुत परेशान हैं। वो बता रही हैं वहाँ पे कि भाई हमें सवारी चाहिए, हम चल नहीं पाएंगे, हमारे पास मुस्तहिब नमाज़ें हैं, हमारे पास वाजिब नमाज़ें हैं, हमारे पास क़ज़ा नमाज़ें भी हमने उतारी हैं, पूरी कोशिश करते हुए दुनिया से आए हैं, नमाज़ों का तो हमारे पास बहुत जो है ज़खीरा है, मगर उनकी नमाज़ भी कबूल नहीं की जा रही। तो हमने पूछा कि ये क्या मामला है, तो बताया गया कि इनको ये कहा जा रहा है कि आप अपने लिबास पे, आप अपने मैचिंग के पर्स पे, आप अपनी हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो रखती थी दुनिया में, मगर जो एक नमाज का लिबास था उस पे आपकी तवज्जो नहीं होती थी। और नमाज का लिबास क्या है? सिर्फ चादर, एक ऐसी चादर जो आपको सर से लेके आपके पैरों के टखने तक, यानी ये जो ऊपरी हिस्सा है पैर का, ये खुला रहे अगर कोई नामहरम वहाँ मौजूद नहीं है। नामहरम अगर मौजूद है तो नमाज की हालत हो या नमाज की हालत ना हो, जब भी पैरों को छुपाना वाजिब रहेगा। अब क्योंकि नमाज की हालत में अगर नामहरम उस जगह पे मौजूद है तो सॉक्स पहनने हैं। तो ये वो ख़वातीन थी कि जो हज़ारों के हिसाब से ब्रांडेड कपड़ों पे और चीज़ों पे बहुत खर्च करती थी, मगर जब नमाज के लिए देखा जाता है इनके घरों की तरफ, इनकी जानमाज़ों में, तो नमाज की चादर के नाम पे एक छोटा सा दुपट्टा, छोटा सा हाफ मखना निकलता है, वो भी जहमत नहीं होती कि उसे धोया जाता, उसे खुशबू लगा के रखें, इतर लगा के रखें। इतनी रिवायात ये सुनती थीं कि इतर लगा के नमाज़ पढ़ने का सवाब दुगना हो जाता है, बल्कि हज़ारों के बराबर चला जाता है। पाकीज़ा, साफ़ सुथरा, पाकीज़ा तो यकीनन नमाज का होता ही है, मगर इनकी इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं होती थी। ये नमाज को ये भी हकीर समझती थी कि बस ठीक है, नमाज की चादर फट रही है, कहीं छेद हो रहे हैं, कलर ख़राब हो गया है, खिस गई हैं धुल धुल के। कुछ के हाँ तो वाकई में हम सब ने देखा होगा कि धुलती भी नहीं है शायद, कभी नमाज़ पढ़ने का किसी का इत्तफाक हो जाए तो अजीब, खुद अजीब सा लग रहा होता है कि किस तरीके की ये चादर है कि उसमें खुशबू भी नहीं होती है। तो ये ये वो ख़वातीन हैं कि इनको भी सवारी नहीं दी जा रही, और इनको भी बताया जा रहा है कि सफ़र जो है आपने पैदल ही करना है, क्योंकि आपने नमाज को हकीर समझा। एक ग्रोह ये था कि जो नमाज को हकीर समझता था। फिर हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि फिर हमें एक ग्रोह नज़र आता है, वो भी बहुत परेशान है और बड़ी वो बहस मुबहसे हो रहे हैं कि हमें सवारी दी जाए, उनको भी सवारी नहीं दी जा रही। उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी नमाज़ों के मसाइल थे, सीखे थे नहीं सीखे थे, तो हमारे दोस्त इल्म ने बताया कि ये वो ग्रोह है कि ये तवज्जो ही नहीं करते थे कि इन्हें दीन और नमाज कहाँ से सीखनी है। इन्हें बताया जाता था कि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, मगर ये इस चीज़ पे तवज्जो नहीं करते थे कि नमाज के बारे में सवाल होगा तो हम नमाज कहाँ से सीखेंगे। हमने अपने कुछ पहले लेक्चर्स में बताया था कि बहुत आसान है कि अब आप लोग अपनी नमाज को इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, कि जब भी वक्त मिले किसी भी एक वक्त की नमाज आप YouTube पे जाके, अब तो लाइव करबला से, नजफ से, ईरान से नमाज आ रही होती हैं, उसमें चेक कर सकते हैं कि वो किस तरह तशहुद पढ़ रहे हैं, किस तरह नमाज पढ़ रहे हैं, किस वक्त किस रकत में क्या पढ़ रहे हैं। तो क्या ये वो ग्रोह है कि ये भी नमाज को हकीर समझता था, और इस तरह हकीर समझता था कि अपनी तरफ से, अपनी जानिब से बहुत सेंसिटिव मौजू आ जाएगा ये फिर दोबारा, कि एडिशन भी नमाज में कर लेते थे। यानी सूरह अलम एक मुकम्मल दुआ है, उसके बाद आमीन कहने की शिया मकतब में कोई गुंजाइश नहीं है, नमाज बातिल हो जाती है। हालांकि देखें आमीन क्या है, कोई ऐसा कलमा नहीं है, मगर खुदा को ये भी पसंद नहीं कि इसमें कोई ऐड करे आमीन, खुदा को ये नहीं पसंद। और इन्होंने अपनी नमाजों में कुछ घटाया कुछ बढ़ाया, मोहब्बत में किया, जहालत में किया, गफलत में किया, कुछ कबूल नहीं होगा। खुदा कहता है शरीयत पे चलना है तो जो हुक्म जिस तरीके से मैंने दिया है उसी तरीके से करना है। मोहब्बत मार्फत अपने दिलों तक रखनी है, इबादात में वाजिबात में सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की चलेगी। तो ये भी ग्रोह जो है नमाज को हकीर समझता था कि जहाँ से समझ में आया वहाँ से नमाज सीख ली, बल्कि जहाँ से दिल चाहा कि ये तो बहुत अच्छा है, कि ये तो जो है बहुत मोहब्बत वाली नमाज लग रही है, ये तो बड़ी अकीदत वाली नमाज है, तो अपनी नमाजों को उस तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया। अब इनको भी सवारी यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो बस आज का हमारा सफ़र यहीं तक, कि तवज्जो करें कि नमाज को हम हकीर तो नहीं समझते। ऐसा तो नहीं कि मौला जो वसीयत करके गए हैं, अल्लाह ना करे कहीं हम उसमें शुमार तो नहीं हैं। अब हम आगे का सफ़र इंशाल्लाह करेंगे, और कल कुछ नए मौजूदात के साथ अपने जो हम बात करेंगे, कि थोड़ा सा हमारे पास सवालात थे तनकीद के हवाले से, तनकीद बहुत अच्छी चीज़ है कि पता चलता है लोगों के जहन में क्या चल रहा है, कि आलम बरज़ख में कुछ ऐसा नहीं है और खुदा रहीम है, वो बख्शने वाला है। तो इसको हम कल बयान करेंगे कि इससे हम क्या मतलब लें, अगर सामने वाले की ये सोच है कि मतलब हम गुनाह करते रहें और खुदा रहीम है, मतलब हमने ये खेल समझ लिया या हमने इसको मजाक समझ लिया। इसको हम कल इंशाल्लाह कवर करेंगे।